السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلی بار کسی مجلس میں اتنا شاندار جواب سنا میں. جان ہے اس کا مطلب ہے نا, اس ٹیم میں, یوتھ ایس آئی او کے نوجوانوں میں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم, اما بعد. دوستو اور ساتھیو, مجھ سے تو پہلے کہا گیا تھا کہ دو گھنٹے کا انٹریکٹو سیشن ہوگا, تو دو گھنٹے ہم بات چیت کر سکتے تھے, لیکن شاید پھر آپ لوگوں نے خیال کیا کہ جو ٹریڈیشن ہے جماعت اسلامی کی, ایسا ہو کہ کچھ تقریر ہو جائے پہلے پھر بات چیت ہو, تو اس کے حوالے سے آپ نے تقریر بھی رکھ دی, تو میں انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا, پھر اس کے بعد ہم اوپن ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. میرا ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایس آئی او کی عمر میں دو تین بہت امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں, ہم اسے نظر انداز کر دیتے ہیں, ہم اس پر بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں, اور ہم ادھر ادھر کی باتیں تو کرتے ہیں, اچھا بھی لگتا ہے, لیکن جو اصل کور ایشوز ہے, جو پنچ کرتا ہے, جہاں شو پنچ کرتا ہو, جہاں ہم کو ریئل لائف میں پرابلمس آتی ہوں, تو ان کو ہم ٹچ نہیں کرتے. آئی ڈونٹ نو کیا ریزن ہے, لیکن میں جہاں بھی جاتا ہوں, آپ جو بھی موضوع دیں, میں اس موضوع کو ٹچ کرتا ہوں جو آپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, چونکہ اس عمر سے ہم گزرے ہیں. ان میں سے ایک ایشو ہے سیکس کا, شادی کا, جوڑے کا, پیر کا. اپ ٹل 30 اس مرحلے سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ پریپیئرڈ نہیں ہوتے ہیں مینٹلی, تو اس فیز آف لائف میں آنے کے بعد ٹربل شروع ہو جاتے ہیں, آدمی ڈیل نہیں کر پاتا. تو اس کے لیے جو پریپیئرنیس چاہیے, وہ پریپیئرنیس ابھی ہونی چاہیے ایس آئی او کی عمر میں. دوسرا ایک ایشو ہوتا ہے, وہ فائنانسز کا ہوتا ہے, پیسے کا ہوتا ہے, جاب کا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے, جسے آپ نے پروفیشن دیا ہے, کیریئر دیا ہے, جو بھی آپ نے موضوع دیا ہے. اور تیسرا تحریک. تو آپ نے دو چیزوں کے درمیان بیلنس کی بات کہی ہے, بیلنس بٹوین تحریکی ایکٹیویٹیز اینڈ کیریئر. میں نے اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا, ایک ٹرائنگل ہے, اس ٹرائنگل سے ہی ایس آئی او کا کوئی بھی ممبر گزرے گا. یہ لینئر نہیں ہے, یہ بائنری نہیں ہے, دو ایشوز نہیں صرف, بلکہ تین پر مشتمل ایک ٹرائنگل بنتا ہے. ایک طرف آپ کی فیملی لائف بنے گی, تیس سے پہلے بنے گی, موسٹ آف دا پیپل جو ہے تیس سے پہلے ان کی تحریکی زندگی میں یہ مرحلہ آ جاتا ہے, شادی ہوتی ہے, دوسرا ہوتا ہے فائنانس کا, کیریئر کا, پیسے کا, اور تیسرا ہے تحریک کا. یہ تینوں کے درمیان کیسے بیلنس کیا جائے, یہ ایشو ہے. اس ایشو کو ڈیل کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم جائیں گے قرآن کی طرف, اور دیکھیں گے کہ چونکہ قرآن کی جو بیوٹی ہے ان میں سے یہ ماڈلز پیش کرتا ہے, آپ کو جو ماڈل چاہیے زندگی میں وہ ماڈل آپ کو وہاں مل جائے گا. تو قرآن جو ماڈلز پیش کرتا ہے, وہ ماڈلز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. ان میں سے ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماڈل شادی کے سلسلے میں. تین ٹرائنگل میں آپ کوئی بھی آگے پیچھے کر سکتے ہیں, کسی کی شادی پہلے ہوتی ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی بعد میں آتی ہے, کسی کی فائنینشیل اسٹیبلٹی پہلے ہوتی ہے, بعد میں جو ہے شادی ہوتی ہے, اور تحریک ان بٹوین دونوں کے ساتھ چلتی رہتی ہے. تو یہ آگے پیچھے سرکل ہو سکتا ہے ٹرائنگل میں. موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیے, تو اس سے ہر نوجوان کو گزرنا پڑتا ہے, یہ مجھے آپ کو بتانا ہے, مجھے ضروری ہے. وہ یہ کہ ایک فیز آتا ہے زندگی میں جہاں لگتا ہے کہ کوئی آپ کا سہارا نہیں ہے, کوئی آپ کا سپورٹر نہیں ہے. تنظیم اور تحریک میں بھی بس ایک فارمل دوستی ہوتی ہے, لیکن زندگی کے اصل ایشوز پر ان سے بھی ہم بات نہیں کر سکتے, کوئی ہمارا دکھ درد پوچھتا نہیں ہے. ہمارے بہت سے دکھ درد ہوتے ہیں جو کوئی ہمارا ساتھی جو ہے شیئر نہیں کرتا ہم سے. صرف ہم مطلب یہ ہے کہ صاحب آپ تقریر کرتے ہیں تقریر کیجئے, آپ کھانا کھلاتے ہیں کھانا کھلائیے, آپ اجتماع اچھا مینیج کرتے ہیں کیجئے, آپ کی ماں بیمار ہے, آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے, آپ کے گھر کے پرابلم, کوئی پوچھتا نہیں ہے سہیوں میں, جماعت میں بھی نہیں پوچھتا ہے, یہ انفارچونیٹ ہے. یہ تو زندگی کا ایک مرحلہ آتا ہے جہاں لونلینس کا شکار انسان ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے ابھی, کچھ لوگ آگے شکار ہوں گے, جہاں زندگی میں بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو آدمی شیئر کرنا چاہتا ہے, بٹ دیر از نو ون ٹو شیئر وتھ, کوئی ہوتا نہیں, کس سے بات کریں ہم. تو یہ جو لونلینس ہے اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی لونلینس سے گزرے جب وہ ایک عیش کی زندگی, عیش سے مراد محل کی زندگی, عیش سے مراد تنوع, ہر قسم کی سہولیات میسر تھیں, وہ تو پرنس کی طرح پلتے تھے. فرعون کے دربار میں جو چھوٹا فرعون تھا, فرعون کے ساتھ تھے, ہم عمر تھے, دونوں بھائی کی طرح پلتے تھے, کھائے پیے, گھوڑا سواری سیکھنا, تیر اندازی سیکھنا, جو اسکلس لرن کرنا تھا وہ سارے اسکلس کو لرن کیا, اور اپر کلاس کی سوسائٹی میں جو راہ و رسم ہوتے ہیں ان سے بھی واقف ہے ضروری. اگر آپ لیڈر بننا ہے, لیڈر ہیں آپ, آپ کو جو ہے دنیا کے جو اپر ایلیٹ کلاس ہے اس کے راہ و رسم سے بھی واقفیت چاہیے. तो जब तक वो चीजें आपको नहीं होंगी तो आप उस जुबान में बात नहीं कर सकते। आपको उसका आइडिया होना चाहिए, एलिट क्लास क्या सोचता है, कैसे बात करता है, चीजों को कैसे देखता है, ये सब चीजों से गुजरे हो। गुजरने के बाद अचानक जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है, सबको होता है वो, जब लोनलीनेस का शिकार हो जाता है। तो फिर वहां से मिस्र छोड़कर मदियन गए। मदियन तक का जो सफर लिखा है तफसीर की किताबों में, तन्हाई थी, वीरानी थी, न खाना था, न पानी, न कोई साथी, जंगल बयाबान वादियों से गुजरे, कहां जहां कुछ मिला खा लिए, जहां कुछ मिल गया पी लिए, किसी दरख्त के नीचे सो गए। एक लंबा सफर था मिस्र से मदियन तक, पता नहीं कि उस जमाने में कितना 8 दिन 10 दिन गुजरा होगा। उस डिस्टेंस को सफर किया, कवर किया वॉकिंग के जरिए से, ना घोड़ा था, ना ऊन, ना कुछ था। मूसा अलैहि सलाम गए, खुद जिंदगी में एक बड़ा सा जो है डिजास्टर होता है। वहां गए तो दो लड़कियां खड़ी हुई थी, मालूम है आपको किस्सा, और पानी पिला रहे थे लोग, दो लड़कियां अपनी बकरियों के रेवड़ को संभाले खड़ी थी, कोई रास्ता नहीं, चारा है कार नहीं। तो बहरहाल उन्होंने किया कि लड़कियों की मदद की, पत्थर को उठाया कुआं से, पानी सींच कर लड़कियों को पिलाया, लड़कियों की बकरियों को पिलाया, और उसके बाद जो है आप किसी दरख्त के नीचे आराम की जीर हो गए, सो गए जाकर। अब ये दोनों गई अपने वालिद साहब से माजरा सुनाया, लड़का बहुत मजबूत है और मदद करने वाला, अच्छा दिल रखता है, तो मतलब एक अमल से भी आपका कैरेक्टर डिस्प्ले होता है, ये याद रखना चाहिए। जब किसी आप अजनबी से डील करते हैं तो आपको लंबी तकरीर करने की जरूरत नहीं है सहयोग का तारुफ कराने के लिए, आपका एक अमल काफी है उसके इसमें छाप बिठाने के लिए कि आप कौन है, वो मालूम हो जाता है, सामने वाला पहचान लेता है, आपका सिर्फ एक एक्ट काफी है। उसके बाद दुआ की, एसआईओ के लोगों को भी दुआ हमेशा करनी चाहिए, मेरी बहुत फेवराइट दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये बहुत जामे दुआ है कि ऐ परवरदिगार मेरी तरफ जो भी खैर तू नाजिल फरमा दे मैं उसका फकीर हूं। अल्लाह के पास यही बोलना चाहिए, कभी अल्लाह के सामने डिमांड नहीं रखना, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मैं कल इंटरव्यू को जा रहा हूं, मेरा इंटरव्यू सलामत हो जाए, मेरा पैकेज इतना मिल जाए, कोई आइडिया अल्लाह को देने की जरूरत नहीं है। यही दुआ है कि रब्बी इन्नी लिमा अंजलता इलैया मिन खैरिन फकीर, परवरदिगार मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल कर दे मैं उसका सवाली हूं, मैं वो पूछता हूं तुझसे। तो हुआ ये कि दोनों में से एक लड़की आई और लेकर गई और उसके बाद शादी हुई, है ना। शादी में महर बहुत इंपॉर्टेंट है, और महर कितना देना चाहिए ये एक सवाल है, और मेरी तकरीरों में इसका जवाब है, शायद आप लोगों ने अगर सुना हो तो मैंने बताया है, अब मैं उसको रिपीट नहीं करता कि रसूलुल्लाह ने कितना महर दिया था। यहां मैं बताता हूं कि मूसा अलैहि सलाम ने महर दिया, कितना महर दिया मूसा अलैहि सलाम ने, कितना महर दिया, 8 साल, 8 साल पूरे उन्होंने जॉब किए और 8 साल की आमदनी उन्होंने महर दी। पूना का एक अवरेज स्टूडेंट अवरेज कितना कमाएगा, 25,000, आप जैसे पढ़ा लिखा आदमी, 8 साल × 25,000 कितने हो गए, 24 लाख रुपए महर देना, इतना पैसा आपके पास होना चाहिए, समझ में आई बात। सादा शादी का मतलब लोग समझते हैं कि कुछ भी खर्च नहीं करना हमारी तरफ से, आप सामने वाले से कुछ डिमांड ना करें, लेकिन आपका मैयार इतना बुलंद है कि 8 साल की तनख्वाह आप महर में दे सकते हो। मूसा ने दिया, कुरान में है ये, मेरी और आपकी बात नहीं है। जॉब किया उन्होंने ससुर के पास, वो पूरी सैलरी महर में चली गई। तो इतना पैसे तो कमाना चाहिए आपको कि महर में 24-25 लाख रुपए दे सके, कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे आप। शादी में शादी महल कहां हो, सूट कहां सिलाना चाहिए, ये सब इमेजिन करता है इंसान नौजवान, महर कितना देना इमेजिन ही नहीं करता, वो तो कमोबेश एडजस्ट करेंगे, 5,000-10,000 में चल जाता है। तो ये है महर की रकम मूसा अलैहि सलाम ने बांधी और शादी हुई। और फिर बीवी ऐसी हो जिसका सपोर्ट हो तो आदमी बहुत बड़ा से बड़ा काम कर सकता है, बीवी अगर पैर की जंजीर बन जाती है तो आदमी काम नहीं कर पाता। बीवी जो है पैर की जंजीर ना बने, बेड़ी ना बने, तो वो आप तो फ्लाई हाई करने में, प्रोजेक्टाइल को तय करने में वो मदद करे। ये नहीं होता है सहयोग के लोगों से या आम लोगों से, क्यों इसके लिए मैं बताऊंगा प्रॉब्लम क्या होता है, कहां आप अटकते हैं, कहां फंसते हैं। एसआईओ के लड़के शादी जब करते हैं तो उनसे पूछा जाए क्या चाहिए, कैसी लड़की चाहिए, आप बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए। जी सर, सदर साहब, गुड लुकिंग हो, नेक और साले क्या वैसा बोले तो असल प्रॉब्लम ये नेक और साले डिफाइन कीजिए। दीनदार से मुराद क्या है? दीनदार से मुराद क्या है? तकवा परहेजगारी कैसे डिफाइन करेंगे? अखलाक कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे पकड़ेंगे आप? तहरीक के एनवायरमेंट से वाकिफ हो, जी हो क्यों हो जी ये पहला मसला तय कीजिए। देखिए गुड लुकिंग भी एक धोखा है, एक वाहिमा है। क्या है गुड लुकिंग? क्या गुड लुकिंग क्या है? लैला मजनू का किस्सा सुने आप? मजनू लैला पर फरेश्ता था, लैला काली थी कलोटी थी। लैला का हुस्न देखना हो तो मजनू की आंखें चाहिए। तो हुस्न और गुड लुकिंग जो कहते हैं एक वाहिमा है, एक धोखा है। तो इसलिए के ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, जो आदमी देखता है उसके हिसाब से है। और दुनिया में इंसान के लिए वो काम आने वाली चीज भी नहीं है जिस चीज को हम ब्यूटी कहते हैं। यहीं आके फंसते हैं। जिस चीज के हम मुतलाशी हैं वो एक शराब है, वो एक मरेज है। उसमें जाके आदमी तलाश करता है तो पानी नहीं मिलता वहां। ब्यूटी का शराब तो है, लेकिन जिंदगी की हकीकत में जहां आदमी को प्यास लगे तो वहां पानी का खतरा नहीं मिलेगा ऐसी बीवी के पास। इसी तरह जो है दीनदारी जब कहते हैं तो ये भी एक वेग वर्ड है कि दीनदारी से मुराद किसे कहते हैं आप? मुझे बाज़ लोगों ने बताया, ये उनका जाती तजुर्बा है, बड़ों ने बताया, बुजुर्गों ने बताया, हमारे घर में दीनदार लड़की को शादी करके लाने से घर बर्बाद हो गया, घर उजड़ गया। लोगों ने कहा, मैंने पूछा तफसील तो बताया कि साहब हर बात पे हदीस नंबर 332 हदीस नंबर 640 कोट करने लगी वो। आप अगर पानी पूछेंगे ग्लास पानी तो हदीस नंबर 332 के मुताबिक पानी आपको जाके पीना मेरी जिम्मेदारी नहीं। आप बोलेंगे मेरी माँ बीमार है जरा देखो, तो हदीस नंबर 730 के तहत आपकी जिम्मेदारी है कि माँ की खिदमत करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये तो मैंने आपको नंबर नोट करा, ऐसे ही मैंने मजाहिया तौर पर कह दिया, वरना उन्होंने खुद कहा कि साहब हर बात के लिए जब बहस शुरू हो जाए, हर बात के लिए जो है हदीस और ये कहने लगे। असल में हदीस का प्रॉब्लम लोगों को समझ में नहीं आता कि रसूलुल्लाह की जो बहुत प्यारी बातें हैं वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होती हैं। एक कॉन्टेक्स्ट में एक लड़की को आपने एक बात कही, एक लड़के को आपने एक बात कही, लोग उसका मफहूम समझ नहीं पाते, उसे जनरली समझते हैं। असल चीज तो यह है कि इंसान का अखलाक और किरदार है, वैल्यूज है। दीनदारी जिस चीज को हम कहते हैं आमतौर पर वो बुरखा नहीं है, वो नोस पीस नहीं है, वो ग्लव्स और साफ जो आजकल फैशन चल पड़ा है हमारे दरमियान, हमारी लड़कियों के दरमियान जो दीनदारी समझती हैं, ये सब नहीं है दीनदारी से मुराद। ये तो जाहिरदारी है, ये तो एक्सप्रेशनिज्म है, ये एग्जिबिशनिज्म है कहेंगे हम। असल चीज वो नहीं है। एट द कोर क्या होना चाहिए लड़की तलाश करने में? अगर ये आपको मिल गई तो आपकी जिंदगी बामे उरूज पे जाएगी। काली कलोटी सही, मोटी सही, कम पढ़ी लिखी सही, लेकिन आपके लिए मैं यकीनी तौर पर कहता हूं कि आपकी जिंदगी में आप आसमान भी छुएंगे और आप जो है मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स लाएंगे, लेकिन उस दिन से आपका जवाल शुरू हो जाएगा। ये आइडिया हो कि कैसी लड़की लाएं, ये है आपकी जिंदगी में बैलेंस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बीवी। वो अगर अच्छी मिल गई जिंदगी अच्छी हो गई। अब दुनिया कुल्लुहा मता और खैर मता एक दुनिया अलमरतुस्सालिहा, पूरी दुनिया एक मता है, पूंजी है, सरमाया है, कैपिटल है, माल है, उसमें सबसे बेहतरीन कैपिटल है अच्छी बीवी का मिलना। रसूलुल्लाह ने फरमाया ये असल है, आप इस उम्र में तलाश करें अच्छी बीवी क्या होती है उसको तलाश कीजिए। अच्छी बीवी गुड लुकिंग नहीं होती है, जरूरी नहीं है। अच्छी बीवी से मुराद फिलोसोफर हो। बाद लड़के कहते हैं इंसाफ मुझे एक अच्छी जो है डिबेट करने वाली चाहिए। क्या घर होना है या डिबेट का प्लेटफॉर्म बनाना है या रोज रोज झगड़ा करना है? ये तो लड़के पूछते हैं डिबेट करने वाली इंग्लिश, अरे इंग्लिश बोल के क्या करेगी, बेहतरीन इंग्लिश बोलने वाली चाहिए, डिबेट करने वाली चाहिए, फिलोसोफर चाहिए। अगर मैंने कहा कि फिलोसोफर चाहिए तो फिर रात में जो है आप लोग वो अमल नहीं कर सकेंगे जिसके लिए शादी करेंगे, सिर्फ फिलोसफी बात करते बैठेंगे फिर। तो ये मैं ख्याली बात है नहीं, ये मैं एसआईओ के बच्चों से बात करके बताता हूं कि ये वो उनकी चीजें होती हैं, डिबेट करने वाली, अंग्रेजी बोलने वाली, फिलोसफी जानने वाली, एमए पीएचडी की हुई लड़की, ये सब काम आने वाली चीज नहीं है। ये मिल जाए एडिशनल तो फाइन, लेकिन कोर नहीं है। कोर क्या है? कोर जो है, जो कहते हैं इंसान तहरीकी मिल जाए, ये भी एक वाहिमा है। दीनदार जब कहते हैं तो दीनदार से मुराद डिफाइन नहीं कर पाते। ये जो मैंने बताया जाहिरदारी एग्जीबिशनिज्म, इसको समझते हैं कि हम दीनदार है, बड़ी दीनदार है लड़की, आयत कोट कर दी उसने, हदीस को कोट कर दिया। नहीं, ये नहीं है। असल में मैं आपको बताता हूं, मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने मुझसे पूछा जमीन साहब शादी करने के लिए मेयार क्या होना चाहिए। मैंने भी आप ही की तरह कहा कि तहरीकी होनी चाहिए, दीनदार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा, मीन साहब मैं तो आपको एक जहीन आदमी समझता था, लेकिन आप भी वैसे ही निकले। मैंने पूछा क्या करना चाहिए। बहुत सही पति की बात बताई। कहा कि औरतपन होना चाहिए जिससे शादी करें, ये वाहिद क्राइटेरियन है। औरतपन, गर्लिशनेस कहते हैं, वुमनहुड कहते हैं इसे, फेमिनाइनिटी कहते हैं इंग्लिश में, फेमिनिज्म नहीं, फेमिनाइनिटी। वो औसाफ जो आमतौर पर फितरतन लड़की से मंसूब है, जेंटलनेस, टेंडरनेस, बीइंग सॉफ्ट स्पोकन, केयरिंग, शेयरिंग, लविंग, नर्चरिंग, ये सिफात ही असल में फेमिनाइनिटी के। ये तालीम से आती नहीं है, ये उसकी फितरत है। आप अगर ठीक है, आप तो यंगर हैं, हम अपने हिसाब में लेंगे तो हमारी माए, हमारी दादी नानी सब पढ़ी लिखी नहीं थी, सही है ना? लेकिन उनको मालूम था जिंदगी का राज क्या है, उनके अंदर लताफत एहसास था, नजाकत थी उनके पास, हसासियत थी जिंदगी में, समझते थे सास से तो कैसे डील करना है, शौहर इस वक्त गुस्से में तो कैसे डील करना है, फिर जब शौहर सॉफ्ट हो जाए तो फिर कैसे उसे अपनी बात बताना है, उसे मालूम था, आइडिया होता था। वो है अकलमंदी, दानिशमंदी और नर्म गुप्तगु, हसासियत, ये सारी चीजें जो है वो निस्वानियत में शामिल है। जैसे हम आमतौर पर निस्वानियत कहते हैं अंग्रेजी में, उसे हम फेमिनाइनिटी कहते हैं, गर्लिशनेस कहते हैं, वुमनहुड कहते हैं, विमननेस कहते हैं, ये सब अल्फाज इंग्लिश में अवेलेबल नहीं। तो शादी के लिए एक मेयार है, ये तलाश करना चाहिए। मौजूदा तालीम का प्रॉब्लम ये है, इल्ला माशाल्लाह, जिन घरों में दीन है उनके घर में नहीं, तालीम, मौजूदा तालीम ने औरत को तालीम देकर उसे औरतपन छीन लिया, उसकी निस्वानियत छीन ली, उसका गर्लिशनेस छीन लिया। अब जाहिर में भी मर्द है, बातिन में भी मर्द है। उसका ड्रेस, उसका लिबास आप देखेंगे, उसके चाल चलन देखेंगे तो भी वो मर्द है, और उसका आइडिया थॉट देखेंगे तो वो भी मर्द है। ये मगरबी तहजीब ने कर दिया, अल्लाह का बदल, फिर भी इस्लामी तहजीब में अभी बाकी है निस्वानियत, समझ में बात। तो अब आप पूछेंगे गर्लिशनेस, वुमनहुड, जिसे मैं कहता हूं फेमिनाइनिटी, उसकी क्या पहचान है? कुरान में उसकी दो पहचान है, कुरान में उसकी दो पहचान है। कुरान में एक जगह ऐसे ही, कुरान में बात चीजों को डिड्यूस करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। अवमई युनशौ फिल हिलियती वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन। लड़की की दो ब्यूटी है, एक एक्सटर्नल ब्यूटी है, एक इंटरनल ब्यूटी है। एक्सटर्नल ब्यूटी है कि वो जेवरों में पलती है। मॉडर्न छोकरी को आप देखेंगे, वो चूड़ियां भी नहीं पहनती, वो कान की बाली भी नहीं पहनती। कुरान ने बताया कि अवमई युनशौ फिल हिलिया, जेवरों में पलती है। तो औरत का जो जाहिरी हुस्न है वो है अडोर्नमेंट, वो है उसका ब्यूटीफाई होना, ये उसका जाहिर हुस्न है। बातिनी हुस्न ये है कि वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, जब झगड़े की नौबत आती है तो वो खामोश रहती है, वो झगड़ालू नहीं होती, वो क्वारलसम नहीं होती है, आर्गुमेंटेटिव नहीं होती है, ये उसकी ब्यूटी है। आज आप मगरबी तहजीब की तालीम के नतीजे में हमारी जो लड़कियां होती हैं वो बिल्कुल जो है लॉयर की तरह बात करेंगी, टाई 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 टाई, है ना? तो बल्कि मर्द से ज्यादा बात करेंगे। झगड़ा जब होता है तो हम देखते हैं कि औरत जब बात नहीं करती है तो मर्द करीब खामोश हो जाता है। असल ब्यूटी है कि वो खामोश रहती है, इसका मतलब नहीं वो बेवकूफ है, उसका मतलब ये नहीं वो बुद्धू है, उसका मतलब नहीं उसे आता नहीं, आता है लेकिन उसे मालूम है कब बोलना है कब नहीं बोलना है, ये उतनी इंटेलिजेंट होती है। ये है वो निस्वानियत, उसे मालूम है कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। तो कुरान ने जो बताया टेंडरनेस, सॉफ्टनेस, उसकी जो इनर ब्यूटी, उसकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है, उन सब की बुनियाद पर ये अगर है वुमनहुड, तो उसके पास दीन भी आएगा, उसके पास तहरीक भी आएगी, वो बच्चा भी जनेगी, वो बच्चों की परवरिश भी करेगी, वो इताअत भी करेगी, वो कम पैसे में भी चलेगी, वो आपके मिजाज के हिसाब से चलेगी। कि वुमनहुड हो तो, वुमनहुड नहीं है, एमए पीएचडी भी है तो वो आपके मातहत चलना जरूरी नहीं, वो एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा जनने के लिए तैयार नहीं होगी, वो सेक्स के लिए भी कानून लगाएगी। आपको अभी इसका आइडिया नहीं है, छोटी उम्र है आपकी, आपकी उम्र छोटी है, मगर यह कि इंसान की बुनियादी जरूरत है, इसमें भी वो पाबंदी लगाएगी आपको। हमारे एक दोस्त ने कहा कि उन्होंने एक शादी की जर्मन की लड़की से, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद तलाक हो गई। क्यों मैंने पूछा, कहा कि अमीन साहब जर्मन के लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, तो सेक्स के लिए भी उसने लगा दिया था पीर और जुमेरात रात के 10 बजे से 11 बजे तक, उसके बीच में कभी हाथ लगाए, नो दिस इज नॉट योर टाइम बोलती थी वो। उन्होंने खुद कहा, उसने मुझे बताया। मतलब ये है कि जो फेमिनाइनिटी जिसे हम कहते हैं, टेंडरनेस जो कहते हैं, सॉफ्टनेस, ये सब जिंदगी, अब आप जिस चीज को आपने तालीम को अहमियत दी, आपने गोरेपन को अहमियत दी, आपने फलाम को अहमियत दी, और आखिर जिंदगी में जो है आपको इन सब चीजों को भुगतना पड़ता है। निस्वानियत ये है कि अल्लाह ने उसका जो नेचर बनाया, उस नेचर में वो बच्चा जनेगी, वो प्यार देगी, वो मोहब्बत देगी, वो आपको सपोर्ट करेगी, आपका बुरा वक्त आया, आपका डाउनफॉल का वक्त आया तो आप उठाएगी, लिफ्ट करेगी और मजीद नहीं गिराएगी, आपसे ज्यादा मुतालिबा नहीं करेगी, और फिर जब आप अच्छे दिन आएंगे तो आपको संभाल के रखेगी, पकड़ के रखेगी, बिगड़ने नहीं देगी। ये है निस्वानियत। यू गॉट माय पॉइंट? ये बहुत जरूरी है ऐसी लड़कियों से शादी करना। मैंने सिर्फ सदर साहब से पूछा, बाकी लोगों से नहीं पूछा। तो एक मामला जिंदगी का ये तय कीजिए। क्या भाई, इनका कुछ और मेयार है? तो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत औरत की ऐसी बनाई है। सही बात यह है कि इंसान को सुकून फराहम करती है, इंसान को मर्द के लिए जो बहुत जरूरी है। इसीलिए कुरान ने कहा, वमिन आयाती है अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ही अनफुस में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया ताकि तुम एक दूसरे से सुकून हासिल करो। और ये जो तस्कीन है, ये सिर्फ सेक्स का मामला नहीं है, ये तो उसे देखने से, उसकी बातों से, उसके प्यार से, उसकी तसल्ली देने से, ये सब चीजों से इंसान को सुकून मिलता है। और सुकून बहुत बड़ा सरमाया है जो कहीं किसी केमिस्ट की दुकान में ये नहीं मिलता। तो आगे की जिंदगी में ये चाहिए। जब सुकून है तो बैलेंस है सारी जिंदगी में। जब आदमी को सुकून नहीं, परागंदा है, टेंशन में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, और इतना दबाव कि आदमी घर छोड़ के भागना चाहता है, सुसाइड करना चाहता है, ये सब मसाइल क्यों आते हैं? दबाव की वजह से। बीवी अगर जो सुकून देने वाली हो तो दबाव प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बैलेंस जिंदगी के लिए अच्छी बीवी की मिलना जरूरी है, नंबर एक। नंबर दूसरा है, ये एक मौजू हुआ, इसमें लव मैरिज का भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस पर बात करेंगे, नहीं है तो नहीं है। अगर ट्रेंड है एसआईओ में तो हम उससे भी बात करेंगे, वरना नहीं चाहिए बात करना। है इश्यू है, रिलेवेंट है। हाँ जी, क्या क्या क्या
है?
अच्छा, दूसरों को बताने में काम आएगा। दूसरों से मुराद उनसे जिनसे दोस्ती है। लव मैरिज का प्रॉब्लम जो है वो ये है कि इंसान जब रिश्ता बनाता है तो ये पायदार है और तादमे हयात है। बीवी शादी जो करते हैं, ये पता नहीं कहीं से कुछ लोगों ने ये बात आम कर दी कि इट्स अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे कहीं कुरान में, हदीस में कॉन्ट्रैक्ट के मुतबादिल या करीब तरीन लफ्ज नहीं मिला। ये कमिटमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लाइफ कमिटमेंट है, पूरी जिंदगी साथ निभाने का है। हाँ, एग्जिट तो हर जगह, जब आप कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो उसमें आप फायर एग्जिट रखेंगे, उसका मतलब फायर लगेगी जरूरी नहीं है, फायर बुझाने के 100 तरीके उसके अंदर मौजूद हैं, है ना। उसके बावजूद रेगुलेशन ये कहता है कि साहब एक फायर एग्जिट की सीढ़ी भी बनाना चाहिए। इसका मतलब फायर लगे लोग भागेंगे जरूरी नहीं है, फायर बुझाने के लिए तो होता है ना भाई। आप लोग जो मॉडर्न इंजीनियरिंग पढ़े होंगे उसमें तो कितने मेथड थे। ऐसे ही शादी एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है, उसमें एक फायर एग्जिट है, तलाक एंड खुला। ये कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो रिलीविंग वो नहीं है, क्लॉज नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट कहने के साथ उसका पूरा तकद्दुस, उसका जो लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट है बीवी के साथ, वो बहुत हल्का पड़ जाता है। तो अब ये जब सिलेक्शन है लाइफ लॉन्ग का, इसमें एक ही स्टेट ऑफ माइंड होना चाहिए, दैट इज रैशनल स्टेट ऑफ माइंड। जब आदमी सेलेक्ट करे अपनी बीवी को तो रैशनलिटी प्ले करना चाहिए रोल। और लव मैरिज में होता है इमोशनलिटी रोल प्ले करता है, आदमी इमोशनल होता है इस वक्त। लड़की का किरदार, लड़की का बिहेवियर सामने नहीं आता, उसकी आंखें अच्छी लगती हैं, उसके दांत अच्छे लगते हैं, उसकी अदाएं अच्छी लगती हैं, उसकी चाल अच्छी लगती है, इट्स ऑल इमोशनल। शादी होने के बाद ना उसके दांत काम आते हैं, ना उसके बाल काम आते हैं, कुछ नहीं, उसके बिहेवियर काम आता है, आपके साथ वो जैसे बिहेव करती है। इसी तरह लड़कियां भी फरेश्ता हो जाती हैं लड़कों पर लव में, क्या चीज है साहब, उसका चीना चौड़ा है, देख रहे हैं ना, सिक्स पैक से है वो, बहुत विट्टी है, बहुत पैसे खर्च करता है। पैसे कहाँ से खर्च करता है, बाप के पैसे ही तो खर्च कर रहा है। जिस दिन कमा के खर्च करेगा उस दिन से 100 रुपए हाथ में खर्च के लिए नहीं देता लड़की को। तो ये सब जो है उस वक्त आंखों पर अकल पर पर्दा पड़ जाता है लव मैरिज में, और आदमी मोस्ट इमोशनल होता है। जिंदगी का कोई भी बड़ा इश्यू तय करते वक्त, ये मेरा खास मौजू है जिस पर मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, वो है स्टेट ऑफ माइंड। आदमी का जो स्टेट ऑफ माइंड है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी से हम डील करते हैं तो उसमें रैशनल स्टेट ऑफ माइंड इज द रिसोर्सफुल स्टेट ऑफ माइंड। इसी में आदमी रिसोर्सफुल रहता है, अकल से परख कर समझ कर दूरस निगाह के साथ किसी भी चीज का। घर ले रहे हो तब भी रैशनल स्टेट ऑफ माइंड से लेना है। रंगो रोगन, हाँ क्या अच्छा है, रंगो रोगन देकर लेते हैं, एक मेख मारने के साथ पूरा जो है टाइल गिरने लगता है। तो रंगो रोगन को नहीं देखते, जाहिर को नहीं देखते, घर लेना तब भी दूर रस सोचते हैं, बहुत सी चीजों को सोचना पड़ता है। तो कहने का मतलब है रैशनल स्टेट ऑफ माइंड नहीं होता उस वक्त, उस वक्त इमोशनल होते हैं। और लव में करता क्या है लड़का भी, ही पुट्स हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सबसे पहले जो बेहतरीन चीज है दिखाने के लिए वो पेश करता है, उसका कपड़ा होता है, दो चार अशार बोलता है, बहुत ही विट्टी लगता है, दो चार साइंस की बात में बोलता है, लड़की शशधर रह जाती, क्या एनसाइक्लोपीडिया पड़ा हुआ है, हालांकि वो एक पेज पढ़ के आया होता है। ऐसा ही लड़का का भी मामला है, पैसा खर्च करता, लड़की समझती कि बड़ा दरिया दिल फयाज है, मालूम होता है शादी के बाद ऑटो के लिए 100 रुपए चाहिए तो नहीं देता, पहली डिलीवरी होती है तेरी अम्मा से बिल ले बोलता, डिलीवरी का खर्च भी नहीं देता शौहर। ये आमतौर पर समाज में ऐसे। तो लव मैरिज का प्रॉब्लम है कि इट्स नॉट माई ओपिनियन, इट्स नॉट माई कंक्लूजन, इट्स नॉट माई ऑब्जर्वेशन। सोशल साइकोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी करके बताया है कि लव मैरिजेस ऑलवेज और मोस्ट ऑफ द टाइम एंड अप विथ फेल्यूर। लिखा है उन्होंने, इसका कन्वर्टेशन, इसका वर्ड देखे इंग्लिश में, कि व्हेन दे से लव मैरिज, लव तो कहा जाता है अंग्रेजी में, ही हैज फॉलन इन लव। फॉलन इन लव का मतलब है माउस के छिलके में पैर रखकर जैसे फिसलते हैं वैसे फिसल गया। ये कन्वर्टेशन है, ये फॉलन इन लव। कभी कोई मुस्बत लव आपको नहीं है अंग्रेजी में, उर्दू में भी है, वो इश्क में गिरफ्तार हो गया कहते हैं, उसके लिए भी कोई मुस्बत लफ्ज नहीं है उर्दू में भी। यानी यह है कि साबित शुदा है कि इंसान जब शादी करता है तो अकल की बुनियाद पर, जब बड़े लोग होते हैं, माँ बाप सोचते हैं, उसका खानदान, उसकी उसकी बहन, उसका भाई, उसके रिश्तेदार कौन थे, कैसे थे, पूरी तारीख निकालते हैं, इंक्वायरी करते हैं, मालूमात करते हैं, देखते हैं कि सब हमारे इसे मैच होता है कि नहीं होता है, जरा रंग कम है ठीक है, जरी तालीम कम है ठीक है, लेकिन हमारे खानदान में सेट होगी क्या लड़का लड़की, या लड़का सेट होगा क्या, ये सब देख दिखा कर करते हैं। तो सोशल साइकोलॉजी में लव मैरिज जो है इट मोस्ट ऑफ द टाइम एंड्स अप इन फेल्यूर। उसकी वजह मैंने बताया, अकल पर पर्दा पड़ जाता है। जब जिंदगी की हकीकत खुलती है तब आदमी को पता चलता है कि मैं तो आपसे तवक्को नहीं रखी थी, आप ऐसे हैं। आपने तवक्को रखी, यही तो गलती है, दोनों तरफ से होता है। तो बहरहाल तवक्कात टूटने लगते हैं, मायूसी आती है, खदशात होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और बहुत से मसाइल हो जाते हैं। इसलिए रैशनलिटी का तकाजा है कि अरेंज मैरिज हो, सोच समझ कर हो, बड़ों से पूछ कर, चार तरफ से इंक्वायरी हो दोनों लड़का और लड़की के बारे में, तब दोनों जब करीब आते हैं तो वो एक पायदार रिश्ता होता है। उसमें पूरा समाज आपका सपोर्टर होता है, उसमें आपके वालिदैन आपके सपोर्टर होते हैं, आपका खानदान सपोर्टर होता है, सब सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ के दोनों तरफ से लड़का और लड़की को बड़ी बधाई, बड़ी मुबारकबादी, बड़ी दुआएं मिलती हैं। ये इशू है, एक ही इशू के अंदर दूर चले गए, है ना, ठीक है। तो बहरहाल एक इशू है ये, अगर आप पक्का कर लेते हैं तो बैलेंस लाइफ गुजारने में बहुत मददगार है। यहां मार खाए बैलेंस लाइफ नहीं है, मेरे पास भी आते ही केसेस बहुत इश्यूज होते हैं। एक लड़के से, दोनों से बातचीत हुई, तो लड़के से मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, रोना शुरू किया। उसने कहा अमीन साहब मैं मुसलमान हूं, इसलिए मैं सुसाइड नहीं करता, मैं रोजाना खुदा से मौत की दुआ करता हूं। शादी के मेरे ख्याल से 3-4 साल, समझे, शादी के 3-4 साल में शादी कैसे हो गई, फेसबुक से हो गई। कब बताया उन लोगों ने, और फेसबुक में मालूम है आपको, ये जो फोन जो डिजाइन किया है, जिसने भी किया, काला से काला आदमी भी फोटो ले बहुत खूबसूरत बना के दे देता है, नाक को ठीक कर देता है, रंग रोगन को ठीक कर देता है, सही है, नहीं है, दांतों में जो है वो, हाँ वो पैदा कर देता है स्पार्कल। तो ये तो फोटो का कमाल है, ये एंड्रॉइड का कमाल है। तो फेसबुक से आदमी फंस जाए, उसे इतनी भी अक्ल नहीं है कि ये जो फोटोज लेते हैं इसमें फोटोशॉपिंग भी होती है ना, और कलर ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कोट पहना देते हैं। मैं एक बार गया था पासपोर्ट फोटो लेने के लिए, फोटो ले लिया, लेने के उससे मुझे कोट भी पहना दिया कंप्यूटर में, फिर बाल जो ऊपर से जो उठे हुए थे ना वो सब उसने एडिट कर दिया ऊपर से, ऐसा राउंड लगाया क्लीन हो गया। तो फेसबुक की बुनियाद पे शादी करता है तो बताइए कितना अकलमंद लड़का होगा, बेवकूफी है ना, समझदारी नहीं है ये सब चीजें। तो दोनों सामने मिलना चाहिए शादी में। मैं इसको इस मौजू पर रात में बात करूंगा, इसको यहीं छोड़ते हैं, है ना। रात में जो किताब आम है अगर उसमें आना हुआ तो उसमें बात करेंगे इस मौजू पर। और दूसरा मौजू है पैसे कमाना। पैसे कमाने के सिलसिले में भी जो इश्यू है यंगर जनरेशन का, वो उनकी सोच बहुत छोटी है, उनका ख्याल बहुत छोटा है, उनकी उमंग जो है बहुत छोटी है, और उनकी नजर बहुत कोता है। वो समझते हैं कि साहब किसी जगह जॉब मिल जाए तो काफी है, सॉफ्टवेयर में मिल जाए, मल्टीनेशनल कंपनी में मिल जाए, फलां जगह मिल जाए, और जॉब के लिए फाइल लेकर यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां घूमते रहते हैं, और जॉब की तलाश में दो दो साल काट देते हैं। जिंदगी के दो साल कीमती, और दो साल काटने के बाद उनको एहसास होता है कि जिंदगी के दो महीने कीमती साल काट दिए। अब उनको एहसास महरूमी होती है, उनको यह ख्याल होता है कि मेरे वालिदैन का मैंने हक अदा नहीं किया, उन्होंने जिस उमंग से पाला, जिस तवक्कात से पाला, मैंने उनके तवक्कात पर पानी फेर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं नाकारा हूं, मैं अनफिट हूं, मैं बेकार इंसान हूं। अपने आप को कोसता है इंसान, बाहर नहीं बोलता, बाहर तो टिप टाप आता है, लेकिन अंदर कोसते रहता है कि यू आर फिट फॉर नथिंग, यू आर यूजलेस फेलो। दो साल गंवाने के बाद आखिर में जो है इंसान कुछ ना कुछ करने तैयार होता है। मेरा सवाल यह है कि आपको किसने सिखाया कि आपको नौकरी ही करनी है? क्या आपकी माओ ने आपको सिर्फ नौकर बनाने के लिए जाना था, किसी गुलामी करने के लिए जाना था? मुझसे आके जब कोई पूछता है एमबीए करने के लिए, तो मैं तो कहता हूं कि साहब ये तो सोफिस्टिकेटेड गुलाम तैयार करते हैं, तुम गुलाम बनने के लिए पढ़ते हो? किसी और की नौकरी चाकरी करने के लिए, किसी और के बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए जो तुम पढ़ते हो? आदमी समझते एमबीए और मैं फलां में हूं, फाइनेंस किया हूं मैंने, तो ये तो सोफिस्टिकेटेड गुलामी के लिए तैयार करते हैं लोगों को। मैं एसआईओ के लोगों से कहता हूं कि ये आप जॉब करें, आधा एक साल करें अपने आप को कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, फिर मालदार बनना चाहिए, पैसे खूब कमाना चाहिए, दौलतमंद बनना चाहिए, इसलिए कि इंसानियत को जरूरत है, जमात को जरूरत है, एसआईओ को जरूरत है ना, और ह्यूमैनिटी की सर्विस के लिए दौलत और पैसों की जरूरत है। उसका रास्ता क्या है वो तलाश कीजिए, जायज रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, जल्दी से जल्दी पैसे बनने वाले का रास्ता। नौकरी करके आप पैसे 25,000 कब तक जमाते रहेंगे? यही जो 24 लाख रुपए देने के बाद मैंने कही, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने 8 साल मेहनत की, अब आप और तलाश कीजिए कि वो 4 साल में कमा सकते हैं क्या? आप तलाश कीजिए वो 2 साल में कमा सकते हैं क्या? आप देखिए चांसेस ज्यादा हैं, रिसोर्सेस आज अवेलेबल हैं, दुनिया छोटी हो गई है, कितने कमाने के तरीके हैं। आदमी नौकरी करते हुए भी तो कमा सकता है, ऑनलाइन काम कर सकता है, बहुत सी चीजें आदमी कर सकता है, अपने स्किल बेच सकता है, अपनी सलाहियत बेच सकता है, अपनी कॉमोडिटी बेच सकता है, बहुत से कर सकते हैं। तो पैसे वाला बनने के लिए आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। आपके यहां के इस्तेमाल में या तो आप भी आसमान के ऊपर की बातें करते हैं या जमीन के नीचे की बातें करते हैं। जमीन के ऊपर क्या करना चाहिए वो बात नहीं होती है। पैसे वाला कैसे बने, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे हो, आइडियाज कैसे क्रिएट किया जाए, पैसे कैसे कमाया जाता है, कैसे जो है पैसे को बढ़ाया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, इस पर एसआईओ में सीरियस वर्कशॉप होना चाहिए। उसके लिए दुनिया में बहुत से रास्ते अवेलेबल हैं। तो 30 से पहले मेरा यह कहना है, मैं आज आपको भी कहता हूं, इट्स अ वेरी सीरियस एडवाइस, सुन लीजिए। 35 साल से पहले आपकी कमाई खत्म हो जानी चाहिए, 35 के बाद जिंदगी आजाद होनी चाहिए। रसूलुल्लाह 35 साल तक कमाए, उसके बाद नहीं कमाए। रसूलुल्लाह ने काम नहीं किया, 35 ईयर्स में आपने अर्निंग बंद कर दी, वही पैसे थे जो नबी बनने के बाद 53 साल में मक्का छोड़कर गए ना, तो नबी के 13 साल और उससे पहले के 5-18 साल तक यही पैसे से खाते पीते रहे, तहरीक चलाते रहे, इतनी अर्निंग थी कि उसी से तो तहरीक चली 18 साल। 35 आप ये प्लान बना के चलिए, और इंसान जो सोचता है वो होता है, बड़ा सोचता है तो बड़ा बनता है, फटीचर सोचता है तो फटीचर बनता है, सोचते क्या है वो डिपेंड करता है, और सोच के मुताबिक डिजाइन करना है लाइफ को। तो आपके हाल जिंदगी अगर बैलेंस करना है तहरीक के लिए, तो 35 के अंदर आप पैसे कमा के खत्म कर दीजिए, फिर उसके बाद पूरी जिंदगी तहरीक के लिए लगा सकते हैं। जो लोग नहीं करें वो हर दिन उनके लिए जो है डे टू डे इश्यू होता है, हैंड टू माउथ कमाते हैं, हैंड टू माउथ होते हैं, रिटायरमेंट तक बाय द एज ऑफ 60 भी उनके बाद इतना ही पैसा होता है जितना जिंदगी चला सकते हैं, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं होता। मेहमान आ गए तो मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, किसी के घर जाएं तो कोई मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारा प्लान, भाई अल्लाह ताला ने हमको ऐसा माइंड दिया है कि इसके अंदर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप जो सोचते हैं वैसे ही होता है। गुरबत सोचते हैं तो गरीब ही रहते हैं। हमको प्रॉब्लम यह है कि रसूलुल्लाह के बारे में भी गलत बात लोगों ने बता दिया, आप गरीब थे, आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, महीना महीना चूल्हा नहीं। मुकर्रर और वाइज इतना रंगीन बनाकर उसे पेश करता है कि हमारा आदमी उसे आसानी से परचेज कर लेता। हाँ, भूखे रहना चाहिए, पेट में पत्थर बांधना चाहिए, अच्छा नहीं खाना चाहिए, तंदूर नहीं मांगना चाहिए, और डिफरेंट वराइटीज नहीं पूछना चाहिए, सत्तू का आटा खा के जिंदगी बसर करना चाहिए। ये गोया के हमारे वो वाइजीन जो कमा नहीं सकते थे दुनिया में, उन्होंने अपने को जस्टिफाई करने के लिए आपको सेल किया। आपको मालूम है रसूलुल्लाह 35 बरस में आप करोड़पति थे, बिलियनर थे, पैसे इतना आपने कमाया। और मदीना जाने के बाद 5-6 साल रसूलुल्लाह को तकलीफ है, हर इंसान को आती है तकलीफ 5-6 साल। फिर आपके घर में इतना पैसे आ गया कि एक एक साल का राशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को देते थे, एक साल का, एक महीने का नहीं। आज भी मैं सिर्फ एक महीने का राशन लेता हूं, मेरी इतनी ही सलाहियत है। रसूलुल्लाह एक साल का राशन अपने घर में रखते थे। रसूलुल्लाह अनवाउ अक्सम के कपड़े पहनते थे, लोगों को नहीं मालूम है, भाई बड़ी एंड लार्ज व्हाइट पहनते थे, लेकिन आप जो है रेड कलर का की शेरवानी भी पहने, इतनी फिट शेरवानी भी पहने कि उससे वजू नहीं कर सकते थे। आप शेरवानी खोल कर रखते, बाद में वजू करते थे। आप नक्शो निगारी के मुनक्कश ऐसे जो है आपने ऐसे शेरवानी भी पहनी, हमको बोलते ही नहीं। हमको तो यही बताया जाता है कि सब एक ही कपड़ा था, नहा धो के उसी को पहनते थे। तो अच्छी जिंदगी बसर करने से इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन सब कुछ होते हुए रसूलुल्लाह ने फरमाया अल फख्र फखरी, फकीरी की जिंदगी, सादा जिंदगी में मुझे फख्र है, मुझे शान है। ये है आदमी के पास होते हुए सादा जिंदगी बसर कर, कुछ भी नहीं है, फटीचर है, सब मैं बहुत सादगी की जिंदगी बसर करता हूं। इसमें कौन सा कमाल है सर, ये तो आप मजबूरी है करने के लिए। आपके पास दौलत हो, कार हो, बंगला हो, फिर भी आप पैदल आते हो, फिर भी आप गरीबों के साथ बैठकर खाते हो, ये असल में सादगी है। कुछ भी नहीं है तो आप करते तो वो तो मजबूरी है, आपकी सादगी नहीं है वो। तो पैसे कैसे कमाए, बिजनेस कैसे करें, नए नए स्किल्स कैसे क्रिएट करें, ये सोचना चाहिए। एसआईओ में इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आप इस पर क्लासेस कंडक्ट कीजिए। करने का मौका है तो मुझे बात करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कौन आ सकते हैं आपके लिए रिसोर्स पर्सन, जो आपको बताएंगे। और आपका एक एक एसआईओ का मेंबर जो है बाई 35 वो बिलियनर बनकर खत्म हो जाना चाहिए। इसकी कमाने बाद में सिर्फ ये है कि उसके अंडे बच्चे पैदा होते रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट होंगे। आपने एक इंडस्ट्री चला दी तो वो रन होती रहेगी इंडस्ट्री, लेकिन आपकी एनर्जी कंज्यूम ना करें, आपका डे कंज्यूम ना करें। आपके पास वक्त होगा, आप लीडरशिप कीजिए, पॉलिटिकल इश्यूज से बात करेंगे, लोगों से मुलाकातें करेंगे, प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिसर से मुलाकात करेंगे, ईवीएम के मशीन के इश्यू पर बात करेंगे, फिलोसफिकल आर्टिकल्स आप लिखेंगे, बड़े बड़े जर्नलिस्ट से मुलाकातें करेंगे। आपके पास वक्त होगा, जेब में पैसे ही ना हो तो कहां तहरीक का काम करेंगे, दीन का काम कहां से करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हफ्तावार इज्तिमा में आकर बैठकर चले जाएंगे, बस सवाब मिलेगा। लीडरशिप का रोल नहीं प्ले कर सकेंगे आप, सवाब का काम कर सकते हैं, ये दूसरी बात है ना। अब जब ये दोनों चीजें ट्रैक पर सेट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह तहरीक का काम बहुत ऑटोमेटिकली चलेगा। और तहरीक में एसआईओ के बच्चों के लिए आखिरी बात जो बैलेंस करने का है वो ये है कि हम उनसे एवरेज इंसान नहीं चाहते। हम हर बात ये सोचता है मेरा बच्चा मुझसे 10 गुना आगे बढ़े, कौन सा बात नहीं सोचता भाई, हमने जो तालीम हासिल की उस जमाने में वही मुयस्सर थी, मेरा बच्चा उससे आगे पढ़े, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, भाई हमारी जिंदगी मामूली थी, हमारे बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे शूज पहने, हम करते हैं ना। ऐसे ही हमारी तवक्को एसआईओ से तहरीक इस्लामी की ये है कि हम जो कुछ हैं आज तहरीक के लिए सर्विस दे रहे हैं, अल्लाह ने हमको जो सलाहियत दी, लेकिन हमें चाहते हैं हमसे ज्यादा सलाहियत के लोग आए, हमसे ज्यादा सलाहियत से मुराद आप ऐसे हों जो प्राइमरी सोर्स से पढ़ने के आदी हों, जो आप फिलॉसफी बात कर सकें, आप कुरान हदीस कोट कर सकें, आप इस्लामिक हिस्ट्री से आपकी वाकिफियत हो, मुस्लिम कंट्रीब्यूशन से आपकी वाकिफियत हो। हमारे ऐसा ही नौजवानों का प्रॉब्लम यह हो जाता है कि मुस्लिम हिस्ट्री को नहीं जानते, मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को कुछ नहीं जानते। अब हम जो है कभी लेफ्ट से मुतासिर हो जाते हैं, कभी उनके आइडिया से मुतासिर हो जाते हैं, कभी उनके आर्टिकल को पढ़कर उन्हीं अल्फाज की जुगाली करते रहते हैं, वही जो हमने बारोड वर्ड थे, हमारे अपने ओन वर्ड नहीं, वो बारोड है, उसी की जुगाली का। मैं दो लफ्ज सुनने के साथ समझ में आ जाता है, मतलब ये तो लेफ्टिस्ट के कलिमा थे जो ये बयान कर रहे हैं। आप क्रिएटिव बने, आप फिलोसोफर बने, आप आइडिया वाले बने, आप ग्रेट स्पीकर बने, आप ग्रेट राइटर बने, आप प्राइमरी सोर्सेस से पढ़े, हमने नहीं पढ़ा, आप पढ़िए कुरान अरबी से जानिए, कुरान डायरेक्ट वहां से पढ़िए। आप बाइबल पढ़ना है या दूसरे हिंदू लिटरेचर पढ़ना है तो संस्कृत से पढ़िए, हम तो अंग्रेजी से पढ़ते हैं हिंदू लिटरेचर को। आपकी उम्र है कि आप प्राइमरी सोर्सेस से पढ़ेंगे तो आपकी एक ऑथेंटिसिटी आती है, आपके बात में एक वजन होता है, आप ओरिजिनल सोर्स से बोलने वाले होंगे। तो ये जो अच्छी बीवी मिल गई और पैसे आपके पास अच्छे हों, तो यू गेट टाइम, यू गेट पीस ऑफ माइंड, और आपके पास क्रिएटिविटी के लिए मौका आता है, तो लिखना, पढ़ना, बोलना। और हम ऐसा ही लोगों से जो चाहती हूँ, वो ऑर्डिनरी वर्कर्स नहीं चाहते, हम लीडर्स क्रिएट करने के लिए तंजीम बनाए। और नेक्स्ट सफों में जब लीडर बनकर आप आए, तो हमसे बेहतर होनी चाहिए, जो मौजूदा नस्ल है उससे बेहतर हो। यानी आप आंग में आंग डालकर बात करें, यहाँ के लीडरों से आप बात कर सकें, यहाँ के जालिमों से आप बात कर सकें, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज से आप खड़े होकर बात करने के लायक बने, ये आपकी सलाहियत होनी चाहिए। मोहल्लों में सीधे साधे हम जैसे लोगों को पकड़कर दो चार बात सुना दें, इसके लिए एसआईओ को तैयार नहीं किया गया। तो एसआईओ हैज बीन क्रिएटेड टू प्ले द रोल ऑफ लीडरशिप आने के जमाने में। तो ये तीनों जो ट्राइंगल के जो तीन कॉर्नर्स हैं, ये तीनों कॉर्नर्स मैंने बताया, अब आप उसे जोड़िए, या दो से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए, या ऐसा स्पेस बनाइए, वो आप पे डिपेंड करते हैं। यानी कोई साइड ज्यादा हो जाएगा, कोई साइड छोटा हो जाएगा, ऑलवेज तीनों इक्वल होना जरूरी नहीं है ना ट्राइंगल में, कभी कुछ बड़ा, कभी कुछ छोटा, कभी एंगल का फर्क हो सकता है, लेकिन हर फॉर्म में ट्राइंगल बनाना है। एंगल अक्यूज हो, अपट्यूज हो, जो भी हो, बड़ा हो, छोटा हो, लेकिन ये तीनों के अतराफ पूरी जिंदगी घूमनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी जिंदगी को खुशियों से और कामयाबी से मालामाल फरमाए। आमीन। वासुदावाना अनिल हमदुल्ला।